मैं चूंकि लोग सुन नहीं पाए तो उसको मैं आरंभ से ही बताता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा था। वही कह रहा हूँ कि भाई ये जो आदत पड़ गई है कांग्रेस पार्टी की फुल टॉस देने की नरेंद्र मोदी को, इसमें इसके पीछे क्या है? फिर पीछे तो मैं केवल सब कुछ पूरा का पूरा जो हम सोच सकते हैं कि भाई इसके पीछे कोई स्मार्ट आइडिया है या कुछ है, या कुछ है उसको सोच समझ के यही निष्कर्ष निकला कि ये परम मूर्खता है, परले दर्जे की मूर्खता है। और ख़ास तौर से जो उनके चचा जान जो बैठे हुए हैं, जो मेंटर हैं राहुल गांधी के, और उनके सारे जो हैं वो फ्लॉप शोज ऑर्गेनाइज करते हैं यूके में और यूएस में, वो सैम पिट्रोडा, सत्यनारायण गंगाराम उनका नाम है लेकिन वो सैम है। तो वो सैम पिट्रोडा जी ने शिकागो में जो कुछ कल कहा, और जिसमें ये कहा कि 55% इनहेरिटेंस टैक्स या वेल्थ टैक्स जो है वो लगाया जाना चाहिए, और 55% से अर्थ उनका ये था कि पहले जो एस्टेट ड्यूटी लगाई जाती थी जो 1985 में वीपी सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहकर समाप्त कर दी थी कि भाई ये इम्प्रैक्टिकल है और इसमें जितना कलेक्शन होता है उससे ज़्यादा इसमें खर्चा होता है। लेकिन खर्चे और कलेक्शन की बात एक है, और ऐसा इश्यू जिसको आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया है वो आप मैनिफेस्टो से बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि राहुल गांधी ने जो सबसे पहले बोला कि हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे बोलेंगे, अच्छा वो कहते हुए रुके नहीं है। आज उन्होंने एक और कोई सोशल जस्टिस सम्मेलन को संबोधित किया और सोशल जस्टिस सम्मेलन में उससे भी आगे एक कदम बढ़ गए और ये कहा कि हम हर इंस्टीट्यूशन का, हर कंपनी का, हम सबका सर्वे करेंगे और उसका भी हम जातीय उसकी भी उसमें भी वहाँ जातीय जनगणना करेंगे और हर जाति को हम देखेंगे कि वो कहाँ पर है। तो भाई एक तो ये इन्होंने तय किया है, इनको बिल्कुल किसी भी तरह से जातियों की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई आइडिया नहीं है। एक जाति में एक गरीब भी होता है, बीपीएल भी होता है, और उसी जात में अरबपति भी होता है। यदि आपको देखना हो तो आप जो सबसे सक्षम जाति है इस समय उत्तर प्रदेश में, यादव, उनका ही उदाहरण दे लीजिए, उसमें आपको पता नहीं कितने अरबपति मिल जाएंगे और बहुत सारे बीपीएल भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी जाति का किस प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे? क्या उनको एवरेज आउट करेंगे? और यदि एवरेज निकालना है तो आप फिर इंडिविजुअल्स के साथ में किस प्रकार से न्याय कर पाएंगे? लेकिन ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी इस समय बदले वाली राजनीति करवाने के चक्कर में है, बदले वाली राजनीति जिसको बोलते हैं ना ब्लड मनी वाली, कि भाई लोगों ने आपके ऊपर बहुत अन्याय किया, वो वही वाली जो सारे का सारा जो आर्यन द्रविड़ियन डिवाइड और आपके जो ऑपरेसर ऑपरेस्ट वाला जो बाइनरी है वो सब निकाल के, और वो ये चाह रहे हैं कि जो खास तौर से जो SC ST हैं उनमें एक ऐसी लगे कि वो जो है वो कांग्रेस को वोट दे दे। अब परम मूर्खता की बात तो है ही, अब मोदी जी ने उसको कैच कर ही लिया, बोल दिया। आज आप सुना ही होगा कि भाई कांग्रेस जो है के लिए भारत सोचने वाली बात है कि अपने बच्चों से जो वात्सल्य होता है भारत में माता पिता का, उसको यदि आप चुनौती देंगे तो किसी भी प्रकार से आप ये सोचें कि आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये परम मूर्खता का विषय है। परम मूर्खता का विषय इसलिए है क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, और कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई जो है वो मात्र 4 प्रदेशों में है, वह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुजरात और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से कहीं भी ठहर नहीं रही है कांग्रेस। राजस्थान में जरूर यहाँ पर कुछ उन्होंने व्हाट्सएप जो मैसेजेस चलवाए हैं उन व्हाट्सएप मैसेजेस का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने में आया है, लेकिन वो भी न्यूट्रलाइज हो गया पहले फेज में, क्योंकि पहले फेज में अधिकतर जो ये SC ST की जो जातियाँ हैं उनका वोट कम पड़ा है। तो आखिरकार अब ये वेल्थ टैक्स वाला बीच में लाकर ये क्या करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने पहले ही इनको उड़ा दिया है, वो बता दिया है कि साहब की वेल्थ टैक्स और जो ये पूरा जो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और सबके घर में घुस घुस के देखेंगे, एक्सरे करेंगे, और उस एक्सरे से जो जनता को क्या हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया। प्राइम मिनिस्टर की जो बात है लोग अधिक सुनते हैं, विशेषकर लोकसभा चुनावों में। तो भाई कांग्रेस ने तो पूरी तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कार्य इस समय किया है। पता नहीं उन्होंने अपने जो इंडी गठबंधन के लोगों से सलाह मशवरा किया या नहीं किया। इस प्रकार का कार्यक्रम तो सीपीएम ने भी नहीं दिया है। सीपीएम ने दूसरी प्रकार की मूर्खताएं की हैं। सीपीएम ने ये कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको डिसमेंटल कर देगी, भारत के जो परमाणु क्षमता है उसको समाप्त कर देगी। इस तरह की मूर्खता की बातें उन्होंने अवश्य करी हैं, लेकिन चूंकि उनको हम इसलिए दोष नहीं देते क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल एक पार्टी की ब्रांच भर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसकी ब्रांच है? ये तो तथाकथित तो वो पार्टी है जिसने भारत को स्वतंत्रता में योगदान दिया और अंग्रेज इसको भारत की सत्ता सौंप कर गए। आज ये इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि यह पूरी तरह से जनता के बेसिक राइट्स के विरुद्ध ही कार्य करने में तत्पर है। कतई किसी भी प्रकार से बुद्धिमत्ता तो नहीं कही जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश में इसके इम्पैक्ट की स्टडी कर रहा था। ये जो कुछ इन्होंने बातचीत की है आज जो कहा है उसका तो इम्पैक्ट जो है अधिकतर मिडिल क्लास पे ही आएगा, और मिडिल क्लास में वैसे भी इनके कोई हिताधिकारी है नहीं। और जो इमर्जिंग कास्ट हैं, जैसे इनका जो एडवर्स इफेक्ट जो सबसे अधिक आने वाला है वो दक्षिण भारत में आने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो तथाकथित अपर कास्ट हैं उनकी संख्या बहुत कम है। वहाँ पर अधिकतर जो जातियाँ हैं वो वैसे भी पिछड़ी और जातियों के हिसाब से, मैं उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आर्थिक स्थिति में तो कर्नाटका और तमिलनाडु जो है वो पूरे भारत में सबसे आगे। तो यदि यहाँ पर वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाएगा, सबकी वेल्थ जो है उसका सर्वे करके और सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट सबसे अधिक कहाँ पड़ने वाला है? निश्चित रूप से सबसे अधिक इम्पैक्ट जो है इसका वो दक्षिण भारत में पड़ने वाला है। और इन्होंने वही कहावत की जिसको कहते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे। तो ये चले गए यहाँ पर कोशिश करने के लिए कि भाई किसी तरह से जो है हम यहाँ पर SC ST का वोट ले लें, तो वो यहाँ तो मिला नहीं, मिलने का वैसे भी अधिक प्रश्न उठता नहीं, थोड़ी सी मार्जिन वार्जिन कहीं इधर उधर कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो इनको वैसे भी एक भी सीट मिलनी नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है। बिहार में जहाँ तक प्रश्न है वहाँ तो जिस प्रकार से पोलिंग होती है वो उसी प्रकार से पोलिंग होगी, कुछ नया और अजूबा वहाँ होने वाला है नहीं। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल उल्टा खेला है। पश्चिम बंगाल में जो भद्रलोक है वही ममता दीदी के साथ है, बाकी सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ सर्वहारा वर्ग की रखवाली में तत्पर है। तो फिर वही प्रश्न होता है कि यार ये इनको अक्कल दी किसने? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, इनके घाव होगा, लेकिन साथ में यदि आप देखें कि ये क्यों किया इन्होंने, तो उसका आप मैच कीजिए कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये इस तरह की बात कही कि मोदी जो है वो जो इन्होंने नैरेटिव चलाया हुआ ना कि मोदी फासिस्ट है और मोदी इस तरह करता है और यहाँ पर निज्जर को मरवाया। अरे भाई मोदी जी की तो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, यदि निज्जर को मरवाया तो यहाँ भारत में उससे किसको तकलीफ है? अमित शाह को याद है ना, अमित शाह को पूछा था कि भाई तो आपने इनको बाहर मरवाया तो भाई आपको क्या तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मोदी ने पूरी तरह से एजेंडा पहले सेट किया, सबसे पहले सेट किया जाके बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से महिलाओं के मंगल सूत्र तक वो ले गए इनके इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक सर्वे जो एक्सरे करने वाले थे ये, और उसके बाद वहां से उठाया तो अब सैम पिट्रोडा ने और कुछ दे दिया, मुसलमानों के साथ में और ऐड कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो है वो मुस्लिमों के तुष्टिकरण के लिए दुनिया भर के कार्यक्रम दे रखे हैं। तो भाई सबका वेल्थ सर्वे करोगे और माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रिविलेजेस दोगे तो ये तो एक नेचुरल कंक्लूजन निकलेगा ना। अब इलेक्शन कमीशन से आप मोदी की शिकायत आपने कर डाली खूब सारी, तो उससे क्या होने वाला है? मोदी की शिकायत करते रहो आप, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन क्या मोदी को कहेगा? मोदी ने जो कुछ कहा और राहुल गांधी ने जो कहा उसकी प्रतिक्रिया ही तो है, आपके मैनिफेस्टो में जो लिखा है माइनॉरिटीज के लिए उसकी प्रतिक्रिया ही तो है। मनमोहन सिंह ने जो कहा मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों का पहला क्लेम होगा रिसोर्सेज पे, उसी की प्रतिक्रिया ही तो है। तो भाई ये तो लगातार मैं कहूं कि यदि 2-3 मैचेस आप देख लें तो हर मैच में ये तो, अगर हॉकी का मैच है तो यहाँ पे तो 100-0 का स्कोर हो रहा है। लीजिए मजे, कांग्रेस की दुर्दशा और भी होने वाली है, देखते जाइए। साथ में ये अपने इंडिया अलायंस को भी लेके डूबेंगे। कुछ प्रश्न आए उनको मैं ले लेता हूँ। श्री हर्ष जी कह रहे हैं सर पिट्रोडा वांट्स टू टैक इनहेरिटेंस टू स्टॉप पप्पू इनहेरिटिंग कांग्रेस टू सेव कांग्रेस फ्रॉम गांधी। ये अच्छा आइडिया है, इसको मैं सैम पिट्रोडा को भेज देता हूँ। जगन 66, जय श्री राम सर, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी एनडीए अलायंस के लिए? फ्रॉम कराईकुडी तमिलनाडु। देखिए हमने एक ओपिनियन पोल किया था, उस ओपिनियन पोल में हमने 319 प्लस माइनस 14 सीटें दी थी बीजेपी को और एनडीए को 395। अब एग्जिट पोल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे होगा। नेक्स्ट, एमके चुनाव में जीत के लिए 50% वोट अनिवार्य हो और किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट न मिलने की स्थिति में टॉप दो में फिर से चुनाव हो तो किसे फायदा होगा, एनडीए या विपक्ष? ये तो हर सीट पे तो हो नहीं सकता। यदि यह होगा तो फिर उसके लिए एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना पड़ेगा और फिर ये सिस्टम जो है वो आप बिल्कुल कर लीजिए, तो मोदी जी से तो कोई जीत नहीं पाएगा। अगर मोदी जी के बाद के अगर आप जो लीडर देख लें, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे और कोई हो, तो इसमें तो फायदा एनडीए का ही होना है, क्योंकि ये फिर प्रेसिडेंट वाले सिस्टम के लिए होगा, ये हर सीट पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एमपी राजस्थान में बीजेपी की कमजोरी के लिए वसुंधरा फैक्टर कितना प्रभावी है? देखिए वसुंधरा जी अपना जोड़ तोड़ तो कर ही रही हैं, लेकिन मोदी की जो एक्स्ट्रा 20% वोट पिछली बार थे उनको वो हिला नहीं पाएंगे। एमके कर्नाटक में भी बीजेपी कांग्रेस सीधे फाइट है। जी हाँ, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वहां सीधे फाइट में इनको इसका उल्टा नुकसान होगा इस नैरेटिव का। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।